शुक्रिया भाई राजू, खुदावंद की तारीफ हो। खुदावंद में आप सबको सलाम पेश हो, और खुदावंद जो दुआओं का जवाब देने वाला है उसके नाम की हमद और सताइश हो। अम्मा जी के लिए शुक्र करते हैं कि वो सेहतियाब हैं, और अम्मा जी को बाबा जी बाबा तफैल जी की बीवी को देखकर बहुत खुशी हुई है। सो आए हम सब खुदा के हुजूर झुकें, क्योंकि वो खुदा जिसकी हम इबादत और परस्तिश करते हैं, हमारी मुश्किलात में परेशानियों में हमें अकेला नहीं छोड़ता। जैसे हमने पहले गाया है कि जो कोई खुदा के पर के साए के नीचे रहता है उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। खा मौत की वबा हमारे गिर्द हो, खा परेशानियाँ, खा कितने भी बुरे हालात हों, खुदावंद अपने लोगों को अपने परों में छुपा कर रखता है। तो आए हम खुदा के जुड़ चुके हैं और उस खुदा का शुक्र करें। खुदा बाप तेरा शुक्र हो आज के दिन के लिए, खुदा बाप तेरा शुक्र हो आज की नेमतों और बरकतों के लिए, खुदा बाप तेरा शुक्र हो तेरे बेटे और बेटियों के लिए जो यहाँ पर मौजूद हैं तेरी इबादत के लिए तेरे हजूर झुके हैं, खुदा बाप तेरा शुक्र हो तमाम कलीसिया के लिए, खुदा बाप तेरा शुक्र हो मुल्क पाकिस्तान में हर एक ईमानदार के लिए और हमारी ज़िंदगी की सांसों के लिए, क्योंकि तेरा कोई ना कोई अजीम मकसद मंसूबा है जिसके लिए तूने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा है। तो खुदा बाप आज के कलाम के वसीला से जो कुछ भी हम सीखें तेरे नाम की सताइश हो और तेरे नाम को जलाल मिले। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ निकालें नए अहदनामा में से इफ़िसियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका पहला बाब, उसकी 14वीं आयत में से आज हम दूसरा हिस्सा सीखेंगे, लफ्ज़ मेराज के बारे में सीखेंगे। जैसा हमने कल गुजरे दिन में जो सीखा लफ्ज़ मखलसी, आपको याद होगा कि मखलसी का मतलब क्या है, किसी को बचाना, किसी को निजात देना, किसी को रहाई देना या छुड़ा लेना किसी को, या किसी का कर्जा अदा करना। ये हमने कल लफ्ज़ सीखा था कि हमें खुदावंद खुदा ने गुनाहों की उस मंडी से, गुनाहों की उस जंजीरों से, मौत के उन बंधनों से निकाल कर आज़ाद किया है अपने बेटे के वसीला से, उसकी कुर्बानी के वसीला से। तो मेरे साथ 14वीं आयत देखिए, आज हम सीखेंगे लफ्ज़ मेरास के बारे में कि पालूस रसूल क्यों कहता है कि हमें मेरास मिली और ये क्या मकसद है पालूस का कहने का। तो 14वीं आयत में खुदा का बंदा पालूस कहता है, मेरे साथ कोशिश करें सब कहने की इस आयत को, वही खुदा की मलकियत की मखलसी के लिए हमारी मेरास का बयाना है, ताकि उसके जलाल की सताइश हो। आमीन। यहां पर खुदा का बंदा पालूस सिखा रहा है कि खुदा पाक रू जो हमें मिला है हमारी मखलसी के लिए, हमारी क्या है, मेरास का बयाना है, मेरास का बयाना, यानी कि खुदा की उस बादशाही में जो इख्तियार, जो बरकात जब यीशु मसीह इस जमीन पर आएगा ईमानदारों को मिलेंगे, वो कहता है उस मेरास का बयाना है। आप सोचते होंगे कि इसका क्या मतलब है। मिसाल के तौर पर जब आप कोई जमीन या जगह या चीज खरीदने के लिए जाते हैं बाजार में या मंडी में या दुकान पर, तो आप उस मालिक को क्या कहते हैं, ये थोड़े से पैसे बयाने के तौर पर रख लो, ये चीज मेरी है, मैं वापस आकर ले लूंगा, ले लूंगी। इसी तरह रूहुल कुद्दस भी हमें बयाने के तौर पर खुदा की तरफ से ये तोहफा मिला है, उस मेराज का ये निशान है जो हमें मिलेगी आसमान के खुदा की तरफ से। इसलिए ये मिरास बहुत अजीम है। आज हम सीखेंगे कि क्यों हमें ये मिरास के लिए रूपे आने में दिया गया, ताकि हम जान सकें, ताकि हम समझ सकें, ताकि हम उसकी हमदर्द सताइश कर सकें। मिसाल के तौर पर मेरे साथ इसी बाब की 3 आयत को देखें और पढ़ें। पालूस कहता है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, जिसने हमको आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। हम उन रूहानी बरकत को देख नहीं सकते, लेकिन उनको क्या कर सकते हैं, अपनी जिंदगी में उनका तजर्बा हासिल कर सकते हैं। तो पालूस उसूल ऐसे ही कह रहा है कि ये बादशाही जो जाहिर होने वाली है, अभी तो रूहानी तौर पर पोशीदा है, लेकिन जब वो बादशाही जाहिर होगी, जिसमें उसके लोग उसके साथ क्या करेंगे, बादशाही करेंगे, मेरास हासिल करेंगे, और ये क्या होगी, अजीम बात होगी। इसलिए खुदा ने हमें अपना पाक रूप बयाने में दिया है। मेरे साथ एक हवाला देखें, रोमियो के नाम पालूस रसूल का खत, उसका 8 बाब। जब हम यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाए, तो खुदा के खानदान में हमें शामिल किया गया, हमें उसके बेटे और बेटियां बना दिया गया। इसलिए खुदा का बंदा पालूस कहता है, रोमियो 8 बाब उसकी 14 आयत कहता है, इसलिए जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं, वही खुदा के बेटे हैं। यहां पर वो कहता है कि ईमानदार जो रूहुल कुद्दस की आवाज को सुनते और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, खुदा का नाम उनके वसीला से इज्जत पाता है, इसलिए वो खुदा के बेटे हैं। और 15वीं आयत में कहता है, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली, यानी कि हम गुलाम नहीं, हमें डर और खौफ और गुलामी की रूह नहीं मिली, जिससे फिर डर पैदा हो। यानी कि बहुत दफा पुराने अहदनामा में देखते हैं कि कोई भी ईमानदार, मिसाल के तौर पर जिक्रिया, जिक्रिया नबी को देखते हैं नए अहदनामा में, जब उसकी बारी आई खुदा की हजूरी में जाने से पहले क्या करते थे, काहिनों की कमर पर रस्सी बांधते थे कि अगर वो काहिन उसकी जिंदगी में कोई गुनाह गलती होगी तो खुदा की हजूरी के बायस वो मर जाएगा, तो फिर पता चल जाएगा कि उसके बदन को वापस निकालना है, क्योंकि खुदा पाक है और कोई भी उसकी हजूरी में नापाक खड़ा नहीं हो सकता। तो पालूस कहता है कि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली, तुमको डर की रूह नहीं मिली, बल्कि ले पालक यानी कि खुदा के बेटे बेटियां होने की रूह मिली है, जिससे हम अब्बा। अब हम खुदा से सिर्फ अजनबी तौर पर नहीं कहते कि खुदा कोई है, या आसमान पर कोई ऐसी शख्सियत है, या खुदा से हम अनजान हैं। अब हमारा कहता है खुदा के साथ रिश्ता है, जिसके बायस हम खुदा को अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। अब्बा का मतलब आप सब जानते हैं कि जब कोई बेटा या बेटी अपने दादे या दादी को, दादे या अपने नाने को अब्बा कहकर पुकारता है, तो उसके रिश्ते को जाहिर करता है कि उसका रिश्ता बहुत नज़दीकी है। तो पालूस कहता है कि हमको अब्बा कहने का खुदा को ये हक मिला है। 16वीं आयत देखें, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। इसलिए 17वीं आयत में पालूस कहता है, अगर फर्जंद हैं तो वारस भी हैं, यानी खुदा के वारस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं, ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। पालूस यहाँ पर अब कह रहा है कि हाँ, अगर हम फर्जंद हैं, यानी कि हाँ हम खुदा के बेटे और बेटियाँ हैं और वारस भी हैं, लेकिन इस वारस होने के साथ साथ हम मसीह के हम मेरास हैं, यानी कि जो बरकात, जो कुदरत, जो नेमते बरकतें मसीह के नाम मसीह में हैं, वो सब हमें हासिल है। लेकिन ये हम कब पाएंगे? अगर हम उसके साथ दुख उठाएं। इसलिए जब आप दुख उठाते हैं, मिसाल के तौर पर मसीह के नाम पर आपको ठट्ठों में उड़ाया जाता है, आसमान पर आपका अजर बड़ा है। जब मसीह के नाम की गवाही देने के बायस कत्ल किया जाता है, जेल में डाला जाता है, जलाया जाता है, मारा जाता है, तो बाइबल क्या कहती है? तुम्हारा अजर बड़ा है। और यही बात पालूस कह रहा है कि हम मसीह के हम मेरास तो हैं, लेकिन बात क्या है? बशर्ते कि उसके साथ दुख उठाएं। मिसाल के तौर पर अंकल जवेद आपके दरमियान बैठे हैं, जब कोई फौज में फौजी जंग के लिए लड़ने के लिए जाता है तो बहुत से फौजी कुर्बान होते हैं, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो उस फतह में सब खुशी मनाते हैं जो जंग के लिए गए थे। इसी तरह हम भी रूहानी जंग में जब मसीह के लिए दुख उठाएंगे, मसीह के लिए मुसीबतों का सामना करेंगे, मसीह के लिए बहुत दफा बीमारियां भी हम पर आएंगी, परेशानियां भी हम पर आएंगी, लेकिन अगर हम वफादार रहेंगे, उसके साथ दुख उठाने में कहेंगे, खुदावंद हमें कुव्वत और ताकत दे, हम तेरा पहलू नहीं छोड़ेंगे, हम तेरे दामन को पकड़े रहेंगे, तो फिर क्या होगा? उसके साथ जलाल पाएंगे। जलाल का मतलब क्या? यानी कि शानो शौकत, इज्जत, तारीफ, नूर की मानद चमकेंगे उसकी बादशाही में। क्यों पालूस 18वीं आयत में कहता है क्योंकि मेरी दानिश्त में, कहता है मेरे सोचने के मुताबिक इस जमाने के दुख दर्द, यानी कि मौजूदा हालात, जैसे मच्छरों की बीमारी है, जैसे और कोई बीमारी है, जैसे आप माली तौर पर कमजोर हैं, रुपया पैसा कम है, और तलीम और दूसरी बहुत सी बातें हो सकती हैं, कहता पलूस कहता है कि मेरे सोचने के मुताबिक इस मौजूदा जहां के दुख दर्द इस काबिल नहीं कि उस लायक ठहर सके जो जलाल, जो अजमत जाहिर होने वाली है। और ये क्या है? मसीही ईमानदारों की मेरास के लिए खुदा ने पाक रूह हमें दिया है, ताकि हम रूह के वसीला से इन सारे हालात में से गुजर सकें, ताकि आप भी दाऊद नबी की तरह इस जबूर को गाने वाले बने, खा मौत के साया में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, वो मेरे सर पर तेल को डालता है और मुझे मसा करता है, वो मेरे दुश्मनों के सामने दस्तरखान बिछाता है और मैं उसके घर में सदाबहार अब्दुल आबाद रहूंगा। आप भी ये जबूर गा सकते हैं, आप भी ये दलेरी के साथ कह सकते हैं कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि खुदावन खुदा मेरे साथ है, उसका आसा, उसका इख्तियार, उसकी तसल्ली मेरे साथ है। ये दुनिया तबाही बर्बादी की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है मेरे आने से पहले बहुत चीजें वाकया होंगी, इसलिए आपको खुदा हर तरह की बीमारी से, हर तरह की वबा से बचाने की कुदरत रखता है, जिसका जिसके बारे में हम गा चुके हैं, तपाली तेरे डेरे विच ना कदी बसेरा कर पाएगी, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहता है। इसलिए हमारी जिंदगी, अगर हम मुसीबत परेशानी दुख में हैं, तो ये हमारी उस मेराज के लिए, जैसे दुल्हन के लिए जेवरों की जरूरत पड़ती है कि वो खूबसूरत ठहरे, वैसे ही हम मसीह की दुल्हन हैं, जितने गम, जितनी परेशानियां, मुश्किलात हमारे ऊपर आएंगी, ये इस बात को जाहिर करेंगी कि हम उसके हुजूर उसकी खूबसूरत दुल्हन ठहरेंगे। इसलिए आइंदा दिनों में, आने वाले हिस्सा में हम सीखेंगे खुदा के कलाम में से कि रूहुल कुद्दस कौन है। इसलिए मेरे साथ चंद एक हवाला जा देखें, फिर हम इस हिस्सा को मुकम्मल करेंगे। इमाल की किताब उसका 20वां बाप उसकी 32वीं आयत। पालूस रसूल यहाँ पर इन ईमानदारों से फारग होने से पहले, उनसे जुदा होने से पहले उनको कहता है 32वीं आयत में, अब मैं तुम्हें, इमाल की किताब 20वां बाप उसकी 32वीं आयत, पालूस कहता है, अब मैं तुम्हें खुदा और उसके फजल के कलाम के सुपुर्द करता हूँ, यानी कि तुम्हें खुदा के इत्मीनान हाथों में देता हूँ, उसका कलाम के उन तमाम वादों के सुपुर्द करता हूँ जो तुम्हारी तरक्की कर सकता है और तमाम मकसों में शरीक करके मेरास दे सकता है। हमारी यीशु मसीह में बहुत बड़ी मेरास है। इसलिए आज अगर आप गरीब हैं, आज अगर आपके पास दुनिया का रुपया पैसा शोहरत या शानो शौकत नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा अजर आसमान पर बहुत बड़ा होगा। इसलिए घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नया यरूशलम जो जमीन पर जाहिर होने वाला है, उस नए आसमान में खुदावंद अपने लोगों को रहने के लिए जगह देगा, उसमें कामल शादमानी होगी। इसलिए हमें हर रोज अपना खजाना आसमान पर जमा करने की जरूरत है, ना कि जमीन पर। इसलिए मैं आप सबके लिए दुआ कर रहा हूँ, आप मेरे लिए और मेरे खानदान के लिए भी दुआ करें। खासकर कल मैं रात बात कर रहा था अपने अब्बू से, अम्मी से, तो वो बता रहे थे कि बहुत से लोग उन पर ताने लगाते हैं, उन पर बातें उछालते हैं, उनको ठट्ठे में उड़ाते हैं और कहते हैं कि आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं, आपका बेटा तो बाहर गया हुआ है। इसलिए उनके लिए दुआ करें, उनके लिए दुआ करें, खासकर उन लोगों के लिए जो इस बात का वजह को बनाकर उनको परेशान करते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं मिलता कि इंसान पार्क बैठ कर खाए। और यही बात मैं अपने घर वालों को सिखा रहा हूँ कि आप मुझ पर नहीं बल्कि खुदा पर यकीन करो, क्योंकि आपको अपने मेहनत के हाथ की रोटी खाने की जरूरत है। अगर कोई कहता है कि आपको नहीं काम करने की जरूरत, तो फिर उनके लिए दुआ करें, क्योंकि वो नाकली बेअकली की हालत में ये बात कर रहे हैं। हम सबको काम करने की जरूरत है। मेरा डैड मुझे कह रहा था कि तू मुझे अमेरिका में बुला ले, तो मैंने उनसे कहा कि आप अमेरिका में आ जाएंगे तो यहाँ पर भी काम करना पड़ेगा, फिर लोग कहेंगे आप अमेरिका में काम करते हैं। मैं यहाँ पर हूँ, मुझे भी काम करने पड़ता है, आप यहाँ पर, आपको भी काम करना पड़ता है, ये जरूरत है। भाई आयजक जो दुबई में बैठा हुआ है, उसे भी काम करना पड़ता है। भाई कामरान जो मलेशिया गया हुआ, उसे भी काम करना पड़ता है। बहुत दफा लोग दूसरे लोगों को देखकर कहते हैं कि वो फारग बैठे हुए हैं, इसलिए पता नहीं क्या आ रहा है। इसलिए आपसे दरख्वास्त है, एक दूसरे के लिए दुआ करें, खासकर मेरे खानदान के लिए। इन दुखों मुसीबतों परेशानों का आना जरूर है, लेकिन हमारा खजाना आसमान पर है। आए हम खुदा के हुजूर झुकें। खुदा बाप, तेरे इस खूबसूरत बेटे और बेटियों के लिए जो तुझसे मोहब्बत करते हैं, हर सुबह तेरे हुजूर हाजिर होते हैं, तेरा शुक्र हो खुदा। खुदा उन तमाम खानदानों के लिए, भाई नदीम के लिए दुबई में है, भाई आजक के लिए, भाई कामरान के लिए, भाई इमरान के लिए, और दूसरे उन तमाम ईमानदारों के लिए बेट और बेटियों के लिए जो गैर वतनों में है खुदावंद, उनको कुव्वत और ताकत दे। और इस मौजूदा कलीसिया में तमाम बच्चों के लिए, स्कूल की टीचरों के लिए, बहनों के लिए, भाई ताहर, राजेश, राजू, क्रिस के लिए, तमाम बुजुर्गों के लिए, बहनों के लिए, भाई रियाज के लिए, तमाम लोगों के लिए, तमाम चकू के लिए तुझसे बरकत और तेरी हफाजत और निगहबानी चाहता हूँ। और इनको कुव्वत और ताकत दे अपने खानदान के लिए खुदा, तुझसे हौसला अफजाई चाहता हूँ ताकि वो दिलगीर ना हो, परेशान ना हो, बल्कि तुझ पर तवक्कल करें, ना कि किसी इंसान के बाजू पर। सबको छू, हम सबको बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।